जिसको आजकल हम रक्षाबंधन पर्व के रूप में जानते हैं, प्राचीन काल से इवन आज तक भी बहुत सारे क्षेत्रों में इसे हम श्रावणी पूर्णिमा के रूप में मनाते आ रहे थे। श्रावण मास की पूर्णिमा है और श्रावण मास की का नाम भी श्रावण इसीलिए कि क्योंकि उसमें श्रवण करने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और इसमें दो तीन चीजें सुनने को मिला करता था प्राचीन काल में। जब बारिश होती थी झमझमा बारिश होती थी झमाझम, तो बारिश की आवाज भी। इन दिनों मेंढक भी बहुत होते हैं, तो मेंढकों के भी टरटराहट आवाज भी सुनने को मिलता था। और चातुर्मास्य में बारिश के समय जो साधु सन्यासी ब्रह्मचारी प्रब्राजक प्रचारक कहीं आ जा नहीं पाते थे, तो एक निश्चित जगह पर रहते थे, तो रह करके प्रचार काम या बाकी काम छोड़ करके जो उन्होंने साल भर जीवन भर पढ़ा है उसको रिपीट करते थे, रिवाइज करते थे वेद पाठों को, अपनी चीजों को। तो आसपास के एरिया में वो वेद पाठों की ध्वनि गूंजती थी श्रावण पूर्णिमा। इसलिए ऋग्वेद का मंत्र बड़ा सुंदर कहता है, ये बारिश के मौसम को लेकर के श्रावण मास को, संवत्सरम शशयानाः ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचं पर्जन्य जिन्वतां प्रमंडुक अवादिशुः। ये जो बारिश के मौसम में ब्रह्मचारी ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते थे, जैसे मंडूक या मेंढक टरटराहट आवाज करता है और मेंढक भी ब्रह्मचारियों का नकल करके वेद पाठ करते थे, टर टर करके एक दूसरे को नकल करते थे। और ये पूर्णिमा उस स्वाध्याय पर्व को जो हम भूल जाते हैं या पढ़े नहीं है या पढ़ के भूल चुके हैं, उसको रिवाइज करने का ये त्योहार था, ये फेस्टिवल था। इसलिए इट्स ए फेस्टिवल ऑफ सेल्फ स्टडी, खुद को समझने का और शास्त्रों को चीजों को अपने आप पढ़ने का पर्व है। और ये रिमाइंडर है, इन्हीं दिनों आपको आज भी जो लोग वैदिक परंपरा से आज भी परिचित हैं और मानते हैं या पालते हैं, आज भी बहुत सारे ज्ञानी लोग आज के दिन वेद पाठ शास्त्रों को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग आज जनेऊ बदलते हैं, नदी के किनारे जाकर के स्नान करके जनेऊ बदलते हैं, वेद आदि शास्त्रों का पाठ करते हैं, उनको रिवाइज करते हैं। अल्दो अब धीरे धीरे हमारे यहां अपने धर्मों को समझने की, शास्त्रों को पढ़ने की कोई परंपरा रही नहीं आम लोगों में, जैसे कि बाकी धर्मों में है। सुनी सुनाई चीजों को जान करके उसी को धर्म मानने की हमें ज्यादा आदत पड़ चुकी है। बहुत सारे लोग तो टीवी और मूवीज के सीरियल और मूवीज देख करके धर्म की व्याख्या करते हैं। ये उसका कारण यही हुआ कि हमारे में से वो जो स्वाध्याय की प्रवृत्ति थी, जो सेल्फ स्टडी की, खुद पढ़ने की, अपने बारे में समझने की, अपनी चीजों को पढ़ने की, वो आदत छूट गई है। तो हो सकता है श्रावणी पूर्णिमा के द्वारा हमारे लिए ये रिमाइंडर हो कि हमें दोबारा उस अभ्यास को, उस प्रैक्टिस को दोबारा रिवाइज करें अपने जीवन में। इसी तरह आज हम रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं, राखी बांधते हैं। ये एक नया प्रवर्तन है कि बहनें भाइयों को राखी बांधते हैं, पर प्राचीन काल से ये रक्षाबंधन भी बड़ा पुराना पर्व है, पर सिर्फ बहनें भाइयों की राखी नहीं बांधते थे। पुरोहित राजाओं के, सैनिकों के हाथ में बंधन बांधते थे, इस आशा के साथ कि राजा राज्य की रक्षा करेगा, सैनिक राज्य की रक्षा करेंगे। पुरोहित जो राजाओं के दरबार में जो मंत्री होते थे, 17 तरह के मंत्री, उनमें से एक मंत्री पुरोहित होता था, जो निष्पक्ष होता था, न्यूट्रल होता था, सेल्फलेस होता था, निस्वार्थ होता था, जो राजा से तनख्वाह नहीं लेता था, कोई सैलरी नहीं लेता था, दक्षिणा से गुजारा करता था, क्योंकि इंडिपेंडेंसी के लिए दक्षिणा लेना जरूरी है, सैलरी ना लेना जरूरी है। और वो राजा को ये बताता था, रिमाइंड करता था कि आपका क्या कर्तव्य है। ये रक्षाबंधन पुरोहितों का राजाओं के को उनके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए करने का था। धीरे धीरे समाज में कोई किसी की भी रक्षा करे, जहां से भी प्रतिश्रुति लेनी है, तो हम श्रावणी पूर्णिमा को रक्षाबंधन के साथ भी चलाया। वो अलग बात है कि किंवदंतियां नरेशंस बाद में आए कि मुगल पीरियड में कोई घटना घटी राजस्थान की, कोई रानी पद्मिनी ने अखबार को भेजा। खैर ये सब किंवदंतियां हैं, इनकी सच्चाइयां कितनी अलग बात है, बाद में हम भाई बहन राखी बांधते हैं। पर रक्षा किसी की भी हो, अपनी हो, अपने परिवार की हो, अपने देश की हो, अपने धर्म की हो, अपनी संस्कृति की हो, उस रक्षा करने की यह भाव सभी लोगों के अंदर होना चाहिए। किसी ना किसी लेवल पर, किसी ना किसी मात्रा में, क्वांटिटी में सबके अंदर होना चाहिए। और जिस देश में जितना ये भाव होता है, जितना सेंटिमेंट ये बना रहता है कि मैं अपना, अपने परिवार का या अपने समाज का, अपने देश का, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का रक्षा करना मेरे भी किसी ना किसी जीवन में, किसी ना किसी कोने में मेरा कर्तव्य है, जिस देश में ये भाव जितना अधिक होता है, वो देश उतना ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, उस देश का समाज भी मजबूत होता है, और दुनिया ऐसे देश को, समाज को, लोगों को रेस्पेक्ट भी करता है। देवियों सज्जनों, एक और पर्व आज होता है, कल है रक्षाबंधन के दिन, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, पर बहुत सारे राज्यों में ये भी सेलिब्रेट करते हैं, उसे हम कहते हैं गोवर्धन पर्व। गोवर्धन रक्षाबंधन या श्रावणी पूर्णिमा का पूर्णिमा के दिन ही बलराम, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, अभी कृष्ण का जन्मदिन आप मनाएंगे अगले हफ्ते, जन्माष्टमी के दिन बड़े भाई का जन्म था। बलराम कृषि के प्रतीक हैं, खेती के प्रतीक हैं, आप देखेंगे उनके पिक्चर में, चित्र में वो हल लेकर के चलते हैं, ये कृषि का पर्व है। बलराम किसानी को रिप्रेजेंट करते थे, खेती को रिप्रेजेंट करते थे, उस बलराम के जन्मदिन है। और जिस चीज को वो रिप्रेजेंट करते थे, खेती, कृषक, कृषि, उन सब का पर्व है। तो बहुत सारे जो विद्वान है, ये ज्ञान उनके लिए, ये ज्ञान का पर्व है। जो बलशाली है, ये उनके लिए रक्षा का पर्व है। जो धन और व्यापार में रहने वाले हैं, उनके लिए ये कृषि का पर्व है। और एक छोटा सा इंसिडेंट है, कल भारतवर्ष में ये संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज के दिन रक्षाबंधन के दिन को। संस्कृत भाषा, जो ये भारत का सौभाग्य है कि भारत में ये हुई और भारत में बढ़ी, दुनिया भर के ज्यादातर भाषाओं की जननी यूरोप की भाषाएं हैं, वो भारत की भाषाएं ज्यादातर भाषाओं की जननी है, और दुनिया के ज्यादातर बहुत बड़े ज्ञान का भंडार जो आज भी संस्कृत में है, क्योंकि संस्कृत को पढ़ने समझने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, और जो जिनको पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे हैं, और जिसका लाभ देश को मिलना चाहिए, भारत को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए भारत सरकार इसको संस्कृत दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है, लोगों के अंदर जागरूकता आए, ये भाषा कितनी महान भाषा है, सिर्फ कोई क्लासिकल या पुरानी भाषा के रूप में नहीं, इसका ज्ञान भंडार कितना अचूक है, लाखों लाखों शास्त्र ग्रंथ इसके अंदर समाये हुए हैं, हर विषय के शास्त्र समाये हुए हैं, उन सबको पढ़ने समझने और भारत की असलियत, असली भारत को जानने के लिए भाषा की कितनी जरूरत है, ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो ऐसे अनेक अच्छे चीजों को रिमाइंड कराने वाला ये रक्षाबंधन या श्रावणी पर्व हम सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। और इनसे हम प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़े। इसी के साथ में आज हमारे बीच स्वामी प्रणवानंद जी जो भारत से दिल्ली से पधारे हैं, पिछली बार भी आए थे। आप भारत में गुरुकुल चलाते हैं, गुरुकुल जहां बच्चे प्राचीन काल की परंपरा के अनुसरण करते हुए टीचर्स और स्टूडेंट, अध्यापक और शिष्य एक ही जगह रहते हैं गुरुकुल में। आप आजकल की भाषा में रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। और छठी सिक्स्थ ग्रेड से लेकर के मास्टर डिग्री तक वहीं पढ़ाई करते हैं, शास्त्रों को पढ़ना समझना। और जो कि हमारे लिए आजकल ये समस्या होती जा रही है कि हम अपने शास्त्रों को भूलते जा रहे हैं, हमारे पास अच्छे विद्वान ज्ञानी लोगों की भी कमी हो रही है। और इस नाते ये बहुत बड़ा काम वो करते हैं। दिल्ली में उनका मुख्य गुरुकुल है, इसके अलावा भारत में अलग अलग राज्यों में और 8 गुरुकुल चलाते हैं स्वामी जी। तो आर्य महासम्मेलन न्यूयॉर्क में पधारे थे और ह्यूस्टन भी आए हैं, तो हम उनमें उनका स्वागत करता हूं। वो अपना कुछ विचार रखें स्वामी जी।